मैं 10 मिनट करूंगा तो बस 10 मिनट, मेरे पास घड़ी भी नहीं है, पर मेरे भीतर कोई कह देगा कि 10 मिनट हो गए, इतना समय व्यतीत हो गया। ये अलर्टनेस, ये जो सजगता है, वो सजगता का नाम ही तो सामायिक है। एकाग्र तो और भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन सजग नहीं रहते हैं। सजगता के साथ
एक टेक्निक है वो तो उससे कभी कंपेयर किया गया है अपने वो टेक्निक और इस टेक्निक?
अपने यहाँ पर किसी भी टेक्निक को प्रायोरिटी नहीं दी है, ना हमने उसको विपश्यना कहा, ना हमने उसको प्रेक्षा ध्यान कहा। प्रेक्षा ध्यान तुसी ने शुरू किया, सुशील जी ने शुरू किया, प्रेक्षा भी नहीं कह रहे हैं हम, विपश्यना भी नहीं कह रहे हैं हम, तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आर ध्यान रौद्र ध्यान से बच जाइएगा और धर्म ध्यान करिएगा, वही ध्यान है। अलग से आपको बैठने की आवश्यकता भी नहीं, आप चलते फिरते आते जाते खाते पीते भी ध्यान से युक्त हो सकते हैं। हमने तो फिर ये प्रक्रिया दी कि 24 आवर्स आदमी ध्यान कर सकता है, अशुभ से बचने का नाम ही ध्यान। हमको ध्यान तो हमेशा रहता है, दुनिया भर के कितने सारे चीजों का ध्यान रहता है, तो हम उस इष्ट का वियोग हो गया बहुत देर तक चलता रहता कि अब कब संयोग होगा, अनिष्ट का संयोग हो गया बहुत देर तक ध्यान चलता रहता कि कभी अनिष्ट का वियोग हो जाए, पीड़ा चिंतन हो रहा है। आज ध्यान ही तो है, अभी तो सब ठीक चल रहा है, कल क्या पता क्या होगा, इसी में घंटे भर निकल गए। कहते इनसे बच गए अपन तो धर्म ध्यान हो गया, वो ऐसा धर्म ध्यान 24 घंटे हो सकता, पर सामायिक सामायिक एक निश्चित समय पर, एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित पोजिशन में, एक निश्चित मंत्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का नाम सामायिक। इसलिए हमने उसको ध्यान संज्ञा न देकर के सामायिक संज्ञा दे दी। सामायिक कहो, विपश्यना कहो, प्रेक्षा कहो, बात सब एक ही। वहां पर उसकी प्रक्रिया, विपश्यना की प्रक्रिया में ओम को साधते हैं पहले, ओम पूरे शरीर में से प्रस्फुटित होना चाहिए उनके यहाँ पर। दो तरह की है उनमें, विपश्यना में भी सीधा सीधा भी जो है शांत भाव से बिठाल देते हैं, आती जाती सांस को देखिए बस खत्म। और दूसरे लोग करते हैं कि नहीं, पहले पूरे शरीर को चार्ज कर लीजिएगा, पूरे वातावरण को चार्ज कर लीजिएगा ओम से, और उसके बाद फिर बैठिएगा, तब आपको अपनी सांस में से ओम निकलता और सांस के साथ ओम जाता मालूम पड़ेगा। ये विपश्यना है, विशेष रूपेण पश्यना, माने विशेष रूप से हम जो चीज जैसी है उसको वैसा देख रहे हैं। प्रेक्षा प्रकर्ष रूपेण ईक्षणम, वो भी वही है और शब्द का अर्थ भी है। सामायिक संयम या प्रयोजन, हमारा प्रयोजन ही आत्मा है, उधर भी हमारा प्रयोजन ठीक ठीक देखना है और इधर भी हमारा प्रयोजन ठीक ठीक देखना। अलर्टनेस, सब में अलर्टनेस, एकाग्रता तल्लीनता कह लीजिए या कि सजगता कह लीजिए, सबका उद्देश्य हो। अपने लाइफ में खुद अपने को करना पड़ेगी, बनी बनाई कैसे हो सकती, आपको खुद बनाना पड़ेगी, आपको खुद रिदिम देना पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी रिदिम है। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि रिदिम मिल गई आपकी, बस जहां आपकी रिदिम ट्यूनिंग कहें, ट्यूनिंग आपकी प्रॉपर हो गई, सब गया मन, जिन चीजों से हमारी ट्यूनिंग हो जाती है उनमें हम कितनी जल्दी एकाग्र हो जाते हैं। ये कलर पसंद आ रहा है, बहुत प्यारा है, ये कैसे आपकी कहीं ना कहीं कोई बाहर भीतर है ट्यूनिंग, वो इस कलर से मैच कर रही है इसलिए आपको ये कलर अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। ऐसे ही जो है हर जगह, तो बहुत जल्दी बच्चों की बहुत जल्दी हो जाती, बच्चों की फट से ट्यूनिंग मिलती और वे आपके वो वहीं खड़े रहे, तितली उड़ी तो तितली देखता है, मजे से देख रहे हैं। अपन तो कहेंगे क्या, चलो और बहुत सारी देखी हमने, मगर उसको वही बहुत अच्छी लग रही, वो फूल देख रहा तो फूल ही देख रहा, अपन ऐसा कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। ये नेचुरल कंसंट्रेशन, हमारे यहाँ यही उपदेश दिया गया है कि आप बिल्कुल नेचुरली 24 घंटे, और इसलिए फिर एक जगह लिखना पड़ा कि 24 घंटे जो व्यक्ति निरंतर पंच नमस्कार का स्मरण करता रहता, ध्यान करता रहता, वो निरंतर कर्मों की निद्रा, और उसकी प्रैक्टिस पहले करना पड़ेगी निरंतरता के लिए, घंटे भर बैठना पड़ेगा, सुबह शाम जब भी समय मिला बैठ गए अपन, उसकी प्रैक्टिस कर ली फिर अभ्यास में आ गया तो फिर कंटिन्यू, फिर वो नेचर बन गया। पहले तो जो है एडॉप्टेड रहेगा, फिर उसको इतना इतना कर लीजिएगा कि वो नेचर बन गया। अच्छा,
तो हनुमान मंत्र में उन्होंने ये लिखा है कि इस मंत्र के पढ़ने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं मोदी के जो आभा मंडल होता है उसको ये रीअरेंज करता है। उनका कहना ये है कि
वो जोड़ दिया उससे, नमोकार से अपन ने उसको जोड़ दिया, बाकी इलेक्ट्रो डायनेमिक फील्ड का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है, वो हर एक के पास है और हर व्यक्ति का इलेक्ट्रो डायनेमिक फील्ड अपने आप में प्रॉपर रहता है। जब अब तो इससे चिकित्सा होने लगी है, उसके कलर्स होते हैं और उसका एक कहना चाहिए सिस्टम होता है, अगर जिग जैक है और अगर ब्लैकिश है या वाइटिश है, ब्लूइश है, येलोइश है, रेडिश है, इनके सब कलर होते हैं। उसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। व्यक्ति खुद भी अपने ऑरा को देख सकता है अपने से 3 इंच, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करे वो तो। आप हर चीज का ऑरा देख सकते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, उधर वो पेड़ लगा हुआ है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें आप देखेंगे, मैं देख रहा हूं कि वो पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के चारों तरफ एक एक बॉर्डर बनी हुई है, पूरे चारों तरफ वो उसका आरा है। उस आरा को देख के हम पता कर सकते हैं कि ये पेड़ उस धूप की वजह से, इस तरफ के पेड़ का आरा अलग है, उधर धूप नहीं पड़ रही, वो शांत है, उसका नीला है, इसका हल्का सा येलोइश हो गया, ये क्या मतलब है, वो तकलीफ में है। आरा का कॉन्सेप्ट ये है। और कंसंट्रेशन क्या करता है, इसके साथ हमने नमोकार जोड़ दिया, तो नमोकार क्या करता, अनायास हमारे उस आरा को बैलेंस कर देता है और कुछ नहीं, सबके पास है, बस नमोकार हमने इस पे जोड़ दिया क्योंकि हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं। कोई व्यक्ति नमोकार की जगह पर ओम भूगर्भू स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र जोड़ सकता है, उसके भी वैसे ही इफेक्ट्स होंगे। इसलिए आरा का कॉन्सेप्ट और नमोकार का कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग हैं, हमने दोनों को जोड़ करके देखना शुरू कर और कुछ नहीं। तो यदि वो कह रहे हैं तो आप पहले अपने मन में ये क्लियर कर लीजिएगा कि नमोकार बिल्कुल पृथक शीत है और आरा बिल्कुल, इसका भी आरा है, इसका भी एक आरा है और ये मेरे टच में है, इसलिए इसका आरा चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर आपके हाथ में दे दूं तो इसका आरा चेंज हो जाएगा। बस व्यक्ति के साथ ये है कि उसका आरा अपने आप जैसा वो चाहे वैसा, पर इसका आरा अपने आप नहीं बन सकता, इसका आरा जिसके संपर्क में रहेगा उसके अनुसार बने। मंदिर की माला का आरा अलग है, घर की माला का आरा अलग है, ये क्या है, ये हमारे हमारे जो कहना चाहिए चेतना के द्वारा जो इफेक्टेड चीजें हैं वो वैसा आरा देने लगती है।
तो फर्दर उन्होंने कहा है कि जैसे लघुकाल मंत्र आपने पढ़ा, आपके मन में कुछ विचार खराब हुआ और आप कहीं काम के लिए जा रहे हैं या किसी को आपको आघात करना है, तो अगर आप लघुकाल मंत्र पढ़ लिया, वो पढ़ के गए तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इस तरह रीअरेंज हो जाएंगे, आपका मन वो आघात करने का होगा ही, ऐसा उन्होंने फर्दर उसमें ऐड किया है।
क्योंकि आपके मन पवित्र हो गया ना, आपको मन पवित्र हो गया तो आपका आरा पवित्र हो गया, आरा पवित्र हो गया तो आपको अब एक्साइटमेंट का संभावना ही नहीं है। मंदिर के पास से गुजरिएगा, चोर भी होगा तो एक बार मन में आएगा कि क्या मतलब है चोरी करने से, मंदिर का ऑर्बिट, मंदिर का आरा उसको प्रभावित कर रहा है। मंदिर के परिसर में खड़े होकर के एक क्षण तो चोर भी चोरी करने आया होगा तो एक क्षण हाथ उसका रुकेगा, फिर इसके बाद चूंकि उसकी हैबिट है इसलिए उसका आरा बहुत अधिक प्रबल है, वो उसको तोड़ देगा, वो जो उस मंदिर का आरा था उसको तोड़ देगा। हम लोग एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, जिसका आरा प्रबल होता है उसके उसके प्रभाव में सारे लोग आते चले जाते हैं, आरा का तो खेल ही है। और या कि जैसा आरा आपका है वैसे ही आरा मेरा है तो आपकी रिदिम बहुत जल्दी मिल जाएगी, नहीं तो आप इरिटेट करेंगे और बाहर जाना पसंद करेंगे कि क्या मतलब।
और मैंने साहब एक बड़ी विचित्र चीज अपने जीवन में देखी, मेरे लड़के का रिजल्ट आया है पीईटी का और 6 लोगों ने उस रिजल्ट को देखा, उस पेपर में प्रॉब्लम उसका और किसी को नहीं देखा, वो पेपर फाड़ने लगा, गुस्से में आ गया, उसने बोला कि भाई मैंने इतना अच्छा किया क्यों नहीं आया। मैंने बोला बेटा अपने वो पेपर से कोई गुस्सा करने की जरूरत है, आना नहीं आना अपने भाग्य की बात नहीं आया हो, देखेंगे आगे देखेंगे। मैंने पेपर को रख दिया, इसके बाद में मैं उसके बाद ये तय हुआ कि पिक्चर देखने जाएंगे, आज कोई अच्छी पिक्चर लगी हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम की पिक्चर लगी हुई थी, उसको हम लोग देखने गए, पता नहीं साहब अनायास मुझे पेपर रखा हुआ था, मैं नोबार
सितंबर का प्रवचन शुरू होता है।
देख लेंगे पूरा। हाँ, फिर हमने कहा कि पूजा, तो पूजा के बारे में राय रखती जितना जानने लायक हो सकता पूजा के बारे में। अभी तो हमने जनरल की पूजा देव पूजा के मायने समझ लिया, लेकिन पूजा कैसे की जाती शुरू से आखिरी तक, उसके क्या मायने होते हैं, ये सब अपन एक अलग अलग चैप्टर अब जो है चैप्टर वाइज करेंगे। ये आचरण खत्म होने के बाद गुण स्थान है, देव दर्शन की प्रक्रिया, देव पूजा की प्रक्रिया, इन सब प्रक्रियाओं पर जो पूजाएं हैं उनके थोड़े थोड़े अर्थ अगर अपन करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएंगे। ये तो है उसमें पूरा प्लान।
इसमें
परीक्षण
या दूसरे टाइम पर भी तो मॉर्निंग पे अगर फ्री हो जाते हैं तो मॉर्निंग पर
देखें। मेरा बिल्कुल बेस्ट है, 3:30 से शुरू होता है रात और 6:45 में गेट खोलता हूँ। 6:45 से फिर हम लोग भक्ति करते हैं तो 6:15 बज जाते हैं। 6:15 से 7 बजे तक मैं अपना लेखन का कार्य जो रहता है वो लिखता हूँ। 7 बजे मैं निकल जाता हूँ शौच के लिए तो वहाँ से 8:15 बजे लौटता हूँ। 8:30 बजे प्रवचन का दिन होता है तो प्रवचन के लिए पहुँच जाता हूँ। एक दिन फ्री रहता हूँ तो उसमें जो काम पेंडिंग में है किसी से डिस्कशन करना है तो उसको नहीं, हम अपना डेली डिस्कशन जो करते हैं वो शुरू करने वाले हैं।
हाँ,
आपके जाने का है, आप रुक रहे हैं या जा रहे हैं ये सब नहीं तो बीच में आपको कल तो 11 प्रतिमाओं के ऐसे ही एक जनरल आउटलाइन, 5 प्रतिमा 5 मिनट में जो है पूरी कर ली थी। उसका कुछ वो नहीं है, मुख्य उसका ये है कि जैसे जैसे हमारा जीवन माने परिष्कृत होता जाता, जैसे जैसे पवित्र होता जाता, वैसे वैसे कई चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती। जैसे जैसे हमको सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो गई, अब सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो गई तो हम चाहेंगे कि उन्होंने जो बताया है उसको हम फॉलो करें, आंशिक रूप से भले ही करें। तो फिर व्यक्ति जब भगवान के द्वारा बताए गए आचरण को आंशिक रूप से अंगीकार कर लेता है, 5 अनुव्रत ग्रहण कर लेता है क्योंकि भगवान ने यही बताए हैं, तो 5 अनुव्रत अंगीकार कर लेता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति उसकी श्रद्धा है और वो धीरे धीरे अभक्ष चीजों से बचना शुरू करता है। तो इसी के लिए बोलते हैं कि दार्शनिक श्रावक, ये पहली प्रतिमा होगी कि उसने अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया, सच्चे देवगुरु शास्त्र की उसकी श्रद्धा है और 5 अनुव्रत ग्रहण कर लिए हैं उसने। अभी अनुव्रत की हैसियत से भले ही ना ग्रहण किया पर उनका अभ्यास उसने शुरू कर दिया, तो इतना शुरू कर देता है तो वो दार्शनिक श्रावक हो गया, उसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं। जब वो 5 अनुव्रतों के साथ में और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को और ग्रहण कर लेता है तब उसी को व्रत प्रतिमा कहने लगते हैं। क्यों, अब उसके मन में और आया कि 5 अनुव्रत का पालन तो करते हैं पर इन अनुव्रतों के साथ साथ जो है हम अपनी सीमा और क्यों ना बांध लें, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और अपना क्षेत्र भी सीमित कर लें और जो व्यर्थ काम हमसे होते हैं अनर्थ उनको भी हम छोड़ दें। तो मन वचन काय की व्यर्थ क्रिया को भी छोड़ने का मन हो जाता है तो अनर्थ दंड व्रत भी हो जाता है, उसके दिग्व्रत देश व्रत भी हो जाते हैं, थोड़ा सा साधुओं के आचरण की शिक्षा लेने के लिए वो सामायिक भी शुरू कर देता है, 2 समय तो करें ही कम से कम बैठ करके, और मैं पर्व के दिन में जब उसकी सुविधा बनती है तो पर्व के दिन में उपवास भी करना शुरू कर देता, प्रोषद उपवास आ गया, भोग उपभोग का परिमाण भी उसने कर लिया कि भाई इतनी इतनी चीजें ही हम खाएंगे, इससे ज्यादा का उपयोग नहीं करेंगे, और भैया वृत्ति शुरू कर दी, अतिथि संविभाग जब भी भोजन करता है तो वो ध्यान रखता है कि जितने मुनि महाराज हैं उन सब का निरंतराय हो गया हो, मैं भी शुरू करता हूँ, अतिथि संविभाग आ गया उसका, ऐसे करके वो 12 व्रतों का पालन करने लगता है। इसी को अपन दूसरी प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा एक्चुअली शावक के विकास की कक्षाएं हैं, जैसे अपन पहली दूसरी तीसरी पढ़ते हैं ऐसे शावक के लिए एक एक कक्षा पास करनी होती है, और मजा ये है कि पहली कक्षा अगर पास कर ली दूसरी में पहुंच गए तो पहली भी पढ़ना पड़ेगी दूसरी भी पढ़ना पड़ेगी, ये नहीं मामला बनेगा कि पहली का कोर्स खत्म दूसरी के में पास हो जाओ, नहीं, यहाँ पहली में भी पास होना पड़ेगा, दूसरी में भी, एक साथ। और अगर तीन ले ली है तो पहली दूसरी तीसरी सबका रोज रोज पढ़ना पड़ेगा। मैंने तीस जितनी प्रतिमाएं बढ़ती जाएंगी उनके पहले वाली प्रतिमाओं का भी आचरण आपको उसके साथ ही करना पड़ेगा, ये इसके साथ जरूरी, प्रतिमा के साथ। अब फिर सोचता है कि अभी तो हमसे बहुत ज्यादा पाप हो जाते हैं, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि और हम थोड़ा सा समय अपना निकालें धर्म ध्यान के लिए। तो फिर कहते कि अब अभी तो दो समय सामायिक करते थे और कभी करा नहीं, करा दोष भी लग जाते थे, अब तो जो है सामायिक का समय बढ़ाते हैं, तो फिर मैं भी करेंगे सुबह दोपहर और शाम तीनों संध्याओं में सामायिक नियम से 48 मिनट करने का नियम ले लेता है, तीसरी प्रतिमा होगी, सामायिक प्रतिमा होगी। कोई बहुत बड़े नियम नहीं है उसमें, बस इतना तय कर लिया उसने कि अभी दो टाइम करते थे, अब तीन टाइम सामायिक करेंगे और अंतर्मुहूर्त करेंगे, 100 काम छोड़ के करेंगे। अभी तो काम निपटा लेते थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 बजे का 7 बजे शुरू कर ली, पर अब तो 6 बजे यानी 6 बजे का, तो तीसरी प्रतिमा हो गई। अब जो है अभी प्रोषद उपवास का व्रत तो लिया था, पर कभी कभी जो है एक आसन भी कर लेते थे अष्टमी चतुर्दशी को, लेकिन अब तो उपवास ही करेंगे, अब तो नियम से जो है, और एक दिन पहले एक आसन भी करेंगे, बाद को भी एक आसन करेंगे और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करेंगे। अब उत्कृष्ट प्रोषद उपवास नियम से करने की धारणा बना ली, तो चौथी प्रतिमा हो। उन्हीं सब का अगर देखें अपन तो इन्हीं सब में मास्टरी होती जा रही उसकी, जो जो व्रत उसने लिए, व्रत तो कुल 12 ही हैं, उन्हीं व्रतों में मास्टरी करता जा रहा। अब अभी तो ऐसे ही कहीं भी खड़े होकर के भोजन वोजन कर लेते थे, केला रस्ते मिल रहा है, भूख लगी है तो वहां से खरीदा, छीला और खा लिया, कहते तो ये मामला गड़बड़ है, इसमें तो लालसा ज्यादा है। अब तो हम बिना अचित्त किए हुए चीजों को, बिना गर्म किए कोई भी चीज नहीं लेंगे, वनस्पति इत्यादि पानी भी जो है वो प्रासुक करके लेंगे। अब इतना जो है पांचवी प्रतिमा वाले के आगे, पांचवी प्रतिमा वाली पानी वनस्पति इत्यादि खान पान की चीजें सब प्रासुक करके लेता, सचित त्याग नाम की प्रतिमा होगी। फिर अभी तो जो है स्वयं तो रात में नहीं खाते थे, पर बच्चों को खिलाना पड़ता था, मेहमान आ गए तो उनको खिलाना पड़ता था, कोई खिला रहा है तो उसका समर्थन भी करना पड़ता था, अब ये नहीं करेंगे भाई, अब घर के और सदस्यों के जुम्मे हैं ये काम, हमको मुक्त करो इससे, हम रात्रि में ना स्वयं खाएंगे, ना खिलाएंगे, ना खाने वाले का समर्थन करेंगे, छठी प्रतिमा होगी रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। अभी तक हमने जिससे विवाह किया था उसके साथ हमारा संबंध था, ठीक है अब तो जीवन निकलने को हो गया, अब उसके साथ भी हमारा संबंध, जैसे हमने और सबके साथ, बड़े हैं तो माँ के समान हैं, बराबर हैं तो बहन के समान है, छोटे हैं तो बिटिया के समान है, वैसे ही दृष्टिकोण हमारा हो गया। अब हमने जिससे विवाह किया उसके साथ भी हम अपने प्रेम भाव पूर्वक रहेंगे, हमारे मन में अब कोई हम विकार नहीं आने देंगे, ये हो गई सातवीं प्रतिमा, हो गई ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई। अब घर गृहस्थी के काम तो ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, पर ये कमाने का काम कब तक करती रहेंगे, अब बच्चे बड़े हो गए उनके जुम्मे कमाने का सौंपेंगे, हम कमाएंगे नहीं, अब दुकान उकान नहीं देखेंगे भाई, अब तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो, आरंभ का त्याग कर दिया, आठवीं प्रतिमा हो गई। परिग्रह तो अभी सब रख रखा था, तो परिग्रह का भी डिवाइडेशन कर दिया कि बच्चों के नाम सब दे दवा दिया, अपने लिए जितना आवश्यक था उतना थोड़ा सा पूजा के उपकरण और अपने शरीर की आवश्यकताओं के दैनिक उपयोग की चीजें उतनी रख ली, कुछ थोड़ा पैसा रख लिया लिमिटेशन में, भाई 1 लाख रुपए दान वान देने के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए उतना रख दिया, बाकी सब परिग्रह का त्याग कर दिया, नवी प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा हो गई। अब अभी तो जो है परिग्रह अपना त्याग कर दिया था, आरंभ त्याग कर दिया था, लेकिन बच्चे लोग कहते थे कि ये इसको कैसा करना है, ये इसको कैसा करना है, तो सब बता देते थे कि ऐसा व्यापार करना, अब तो अनुमति भी नहीं देंगे, लो अनुमति त्याग प्रतिमा हो गई, दसवीं प्रतिमा हो गई। इसी में रिफाइन होता चला जा रहा है, वो अपने पाप से अपने को बचा रहा है शावक। और दसवीं प्रतिमा में घर में रह करके जब कोई बुला लेता है भोजन के लिए तो आ जाते हैं, निमंत्रण कोई कर लेता है तो किसी दूसरे के यहाँ भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो अनुमति भर का त्याग किया है, पर भोजन के लिए स्वीकृति तो दे देंगे। अब फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब कहाँ तक जो है घर में ही रहें, अब तो घर छोड़ करके किसी मुनि महाराज के पास जाएंगे और वहां पर भिक्षाचर्या के द्वारा भोजन करेंगे, बस ये 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग। मैं अब किसी से अपने भोजन की बात नहीं कहूंगा कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ, या कि मैं बनाने वाले के समर्थन नहीं करूंगा, ऐसा सब जिसके भीतर में आ गया वो उद्दिष्ट त्याग। इसी को बोलते 11वीं प्रतिमा में दो भेद कर देते फिर, जो अपन ने कल नहीं करे थे, ग्यारहवीं व्रत में दो तरह से होती, एक में जिसमें कि कटोरा और खंड वस्त्र माने चद्दर और लंगोटी और पात्र और बैठ करके पात्र में भोजन करते हैं, केश लॉन्च करना कोई जरूरी नहीं है, कटिंग करवा सकते हैं, ये छुल्लक कहलाते हैं। और दूसरे थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो वो दुपट्टा भी छोड़ देते हैं, पानी पात्र में बैठ करके भोजन करते हैं, एक अकेला कॉपीन रखते हैं और मुनियों के समान केश लॉन्च इत्यादि की क्रिया करना शुरू कर देते हैं, वो अलग कहलाते हैं। ग्यारह प्रतिमाएं उनकी भी और इनकी भी, इस तरह से ग्यारहवीं प्रतिमा में दो भेद हो जाते हैं, छुल्लक का और अलग का। इस तरह श्रावक की उत्कृष्ट स्थिति कहां तक पहुंच गई, छुल्लक अलग तक, ग्यारहवीं प्रतिमा तक। तो इसमें भी पहली प्रतिमा से छठी प्रतिमा को धारण करने वाले जघन्य श्रावक कहलाते हैं, सातवीं आठवीं नौवीं प्रतिमा इन तीन प्रतिमाओं को धारण करने वाले मध्यम श्रावक कहलाते हैं, दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करने वाले उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। इस तरह का ये उत्तम मध्यम जघन ऐसे तीन श्रावकों के ग्यारह प्रतिमाओं के, इसी को नैष्ठिक श्रावक बोलते हैं। ये ग्यारह प्रतिमा पहली प्रतिमा से लेकर ग्यारह प्रतिमा तक के सब श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाएंगे। और जो जिन्होंने सिर्फ अनुव्रतों को अंगीकार किया है, भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा है, वो पाक्षिक श्रावक कहलाएंगे। अभक्ष वगैरह का त्याग थोड़ा बहुत कर दिया है उन्होंने, बस इतना। ये ग्यारह प्रतिमाओं के नाम अपन देख लें, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन विरक्त प्रतिमा या रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इनका स्वरूप भी यही है कि अभक्ष का पूरी तरह से त्याग कर देना, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखना, पांच अनुव्रतों का यथाशक्ति पालन करना, ये पहली प्रतिमा। बारह व्रतों का पालन करना दूसरी प्रतिमा, तीनों संध्याओं में नियम से सामायिक करना तीसरी प्रतिमा, नियम से अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना चौथी प्रतिमा। आप कोई भी चीज पानी इत्यादि और खाने पीने की चीज प्रासुक करके ही खाना, ये सचित्त त्याग प्रतिमा। रात्रि में स्वयं नहीं खाना, दूसरे को नहीं खिलाना, ये छठी प्रतिमा। ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना सातवीं प्रतिमा। सब प्रकार के कृषि मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य छह प्रकार के कर्मों को करना छोड़ देना, बस घर गृहस्थी के काम तो करेंगे लेकिन कमाने का काम व्यापार छोड़ दिया, सीधी बात। व्यापार या सर्विस कोई भी ये सब चीजें जिनसे पैसे की अर्निंग होती वो सब छोड़ दिया। फिर जो परिग्रह रख रखा था उसका भी त्याग कर दिया, जो आवश्यक चीजें थी वो भर रख ली, बाकी सब परिग्रह के नाम पर कुछ भी नहीं रखा। फिर अनुमति देना भी बंद कर दिया, आरंभ परिग्रह के लिए बच्चों को कोई अनुमति नहीं देंगे, तो दसवीं प्रतिमा हो गई। और फिर ग्रह का त्याग करके किसी मुनि के निकट जा करके और एलक शुल्लक के व्रत धारण कर लिए, भिक्षाचर्या के द्वारा भोजन प्राप्त करने लगे, वो हो गई ग्यारहवीं। इस तरह से जो है ग्यारह प्रतिमाएं कठिन लगती हैं कि सरल ये बताओ समझने में तो कम से कम सरल है, ज्यादा कठिन नहीं, पर हुआ बहुत है कि प्रतिमा होती है ग्यारह, नहीं बहुत आसान है ग्यारह प्रतिमा। ऐसे ही गुणस्थान है चौदह, जिस दिन अपन बैठेंगे 10 मिनट में गुणस्थान सब समझ में आ जाएंगे, पर ये सब अपन पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएंगे।
एक प्रश्न है जैसे ये तो क्रमवत आपने बताया कि कर्मों की निर्जरा के लिए अंतिम देवी है, पर ऐसा भी हो सकता है कि उस क्रमवत को न फॉलो कोई कर रहा हो और उसमें से कुछ कुछ उसका कर्म निर्जरा तो होगी,
कर्म निर्जरा तो होगी, पर चूंकि उसका संकल्प नहीं है। एक तो होता है तब शास्त्र विधि से, एक होता है शास्त्र विधि के बिना। तो कहते हैं शास्त्र विधि के बिना जो स्वेच्छा पूर्वक व्रत का पालन होता है उसमें निर्जरा उतनी नहीं होती जितनी शास्त्र विधि से जो किया जाता उसमें।
महाराज जी बहुत ठीक है, आपसे मान लीजिए मैंने कोई व्रत ले लिया और उसका मैंने पालन किया, पर ये हो सकता है कि मैं दूसरी प्रतिमा का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा हूँ और उसमें से कुछ व्रत ऐसे ले लिए जो आगे की प्रतिमाओं के,
ठीक है, तो उसमें तो हो ही जाता है। दूसरी प्रतिमा करने वाला का पालन करने वाला ग्यारहवीं प्रतिमा तक के कुछ ना कुछ आचरण को तो करते ही है। अब देखो दूसरी प्रतिमा में प्रोसद उपवास करेगा तो चौथी प्रतिमा वाला मामला हो गया कि नहीं, और जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी को प्रोसद उपवास करेगा उस दिन बिल्कुल अगर उसने मुनियों के जैसे आहार कर लिया तो उसकी पांचवी प्रतिमा हो गई कि नहीं। और दूसरी प्रतिमा है, लेकिन फिर भी जो है पर्व के दिनों में अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रह रहा है, तो उसको ब्रह्मचर्य की सातवीं प्रतिमा जैसा हो गया कि नहीं? पर्व के दिनों में कहता है कि मैं व्यापार अपन नहीं करूंगा, बेटे तुम जाना दुकान पर, हम नहीं जाते दुकान में पर्व के दिनों में। जो उसने आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वाद ले लिया कि नहीं ले लिया? तो ये तो आएगी, उसमें सारी प्रतिमाएं आएंगी। एक एक प्रतिमा अगर आपने शुरू कर दी तो थोड़ा थोड़ा सभी प्रतिमाओं की प्रैक्टिस हो ही जाएगी। पर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो पहली प्रतिमा ना ले, कोई भी प्रतिमा ना ले, सिर्फ अभ्यास करे, तब भी उसके लिए कर्मों की निर्जरा तो होगी, क्योंकि तब कर रहा है, इच्छाओं का निरोध करना तब है। अब प्रोसीजर से नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके हिसाब से
उसको थोड़ी सी,
उसको हम अभ्यास बोलते हैं। अभी तक हमने किसी को प्रतिमा नहीं दी। प्रतिमा बहुत आसान चीज नहीं है, समझाने में आसान है, करने में बहुत कठिन है।
स्वेच्छा से किया गया तभी बाल सब कहलाता है, स्वेच्छा से तब करते हो बाल,
स्वच्छंदता पूर्वक
वो बाल तब कहते हैं।
हाँ, बिना श्रद्धा के किया गया तब बाल तब, बिना सम्यक दर्शन के किया गया तब बाल तब, ऐसी परिभाषा बनाएंगे उसकी। स्वेच्छया मतलब स्वच्छंद वृत्ति पूर्वक, कोई आज्ञा नहीं भगवान की, बिना भगवान की आज्ञा के लिया, बिना श्रद्धा के ले लिया बस। और जो श्रद्धा पूर्वक लिया जा रहा है वो नहीं कहलाएगा बाल।
मंदिर में अपने
सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है आपकी, तो बस खत्म हो गया। अब रही बात नियम लेने की, तो नियम लेने में अपन लोग जो है थोड़े से कच्चे हैं अभी। कच्चे मतलब जहां तहां ले लेते हैं, तो कहते हैं सही उपाय तो इसका ये है कि किसी भी साधु के पास नियम लेना चाहिए, ताकि उसमें होने वाली टूट फूट को आप सुधार सकें। तो फिर एक प्रश्न उठता है, कहां तक हम साधु के को खोजेंगे, कहां मिलेंगे हमारे लिए? साल साल भर तक नहीं मिलेंगे, दो दो साल तक। तो कहते पहले नंबर तो आपको व्रत लेना, तो एक व्रत पहले ले लो कि साल में एक तीर्थ के दर्शन करेंगे और एक साधु के दर्शन करेंगे। पहले तो नियम जी ले लो, फिर और दूसरे नियम बाद में लेंगे। क्या आपके पास 365 दिन में एक दिन भी नहीं है जिसमें कि अपने लाइफ को आप मेंटेन करने के लिए किसी के चरणों में जाके बैठो और तीर्थ पे जाओ? एक तीर्थ पर एक साल में एक बार तो जाएंगे, ताकि दो चार दिन के लिए घर से पूरा संबंध टूट गया और हाँ पूरा संबंध विच्छेद, और हम शांति से दो दिन तीर्थ पर रहेंगे। अपने आसपास 100 किलोमीटर में तो तीर्थ मिल जाते हैं, 100-150 किलोमीटर किसी भी तीर्थ में जाके वहां दो दिन बिताएंगे, और वहीं अगर साधु मिल गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आसपास मिल जाएंगे वहां। और अगर नहीं भी मिलते हैं मान लीजिएगा, तो हम किसी ना किसी को मान लेंगे कि ये हमारे महाराज जी हो गए, इनको हमने गुरु मान लिया, और अब हम अपने आप घर में बैठ के नौ बार नमोकार करके मंदिर में बैठ के नियम ले लेंगे। उसमें कुछ गलती हो जाएगी तो महाराज से मिल लेंगे और कह देंगे कि आपका नाम लेके लिए तो इसलिए प्राश्चित आप दे, वो दे देंगे। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे, प्रक्रिया तो ऐसे करना
पड़ेगा।
ये परोक्ष कहलाता है कि आपकी साक्षी पूर्वक मैं लेता हूँ। अभी मुझे जैसे उपवास लेना, तो मैं कैसे लेता हूँ? भगवान के सामने लेता हूँ, लेकिन हमारे सामने भगवान नहीं रहते, आचार्य श्री रहते हैं। कि आपकी साक्षी पूर्वक ले रहा हूँ, कुछ गलती हो जाएगी तो प्राश्चित आपसे लेऊंगा। भगवान थोड़ी देंगे प्राश्चित, वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं बोलते तक नहीं।
ब्रह्मचारी प्रतिमा को इतने बाद में क्यों रखा सातवें पे?
हैं
ब्रह्मचारी प्रतिमा को सातवें नंबर पे क्यों रखा, जबकि जब मोक्ष मार्ग पे चल रहा है तो ये तो पहले नंबर पे हो जाना चाहिए था।
धर्म ध्यान दो तरह से किया जाता है, एक गृहस्थी में रहके और एक गृहस्थी को त्याग करके। गृहस्थी का त्याग करके कर लिया है, ब्रह्मचारी बन गए शुरू से, शादी नहीं की तो बहुत आसानी है। अब शादी भी कर ली और फिर बीच के बिचौंदरा में छोड़ो चाह रहे में जो कहा तो बीच के उन्होंने बीच में ये सब ने करोगे। अब जब गृहस्थी है तो गृहस्थी निभाओ पूरी। जब गृहस्थी आपकी ठीक ठीक बच्चे इस लायक हो जावे कि अब ये बड़े हो गए हैं और अपना संभाल सकते, उनकी भी बहू आ गई, तब फिर जो है वो अपने बहू को पकड़ा देती चाबी और इधर बेटे को पकड़ा देता है पिता चाबी कि अब हम तुम्हारे यहाँ पेइंग गेस्ट हैं। हाँ, हम सिर्फ मेहमान की हैसियत से हैं, बाकी घर तुम्हारा।
पेइंग गेस्ट और गेस्ट
हाँ उसमें बहुत नहीं तो गेस्ट
स्थिति हो
गेस्ट में तो नमस्कार की तरह से बहुत दिन हो गए
वो अपने आप मुंह से निकल गए पेइंग गेस्ट। क्या है ना, इसलिए कि स्वादिष्ट उसमें स्वास्थ्य रहते, किसी का बोझ नहीं रहता। बच्चों का बच्चों पर भी हम बोझ नहीं है, बैठे हम इतना इतना आराम से रह रहे हैं, हम हमारी चिंता नहीं करना, हम हो सकता महीने भर रहेंगे और दो महीने कहीं बाहर रहेंगे, तो हमारे लिए चिंतित नहीं रहना, ना हम तुम्हारे लिए चिंतित रहेंगे, तुम समझदार हो गए इसके लिए। ये तो इस वजह से जो है ब्रह्मचर्य की साधना तो बहुत बात को होकर के जाती है। इसलिए आधा काम हो गया, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब इसके बाद तो आरंभ और परिग्रह का त्याग आसान हो जाता है, क्योंकि सारा जुटाना काय के लिए पड़ता है, उसी के लिए ना जुटाना पड़ता है, और दोनों ही विरक्त हो गए हैं, तो दोनों विरक्त हो गए तो अब क्या रखा हुआ है फिर संसार में, काय के लिए आरंभ और काय के लिए परिग्रह, दोनों लिमिटेशन कर लिया अपनी आकांक्षाओं का, तब उस दृष्टि से रखा। मोक्ष मार्ग का ऐसा नहीं समझना कि जो ब्रह्मचर्य है वही मोक्ष मार्गी है। हमारे भगवान 84 लाख पूर्व वर्ष में से 83 लाख वर्ष पूर्व तक घरे रहे, और दो दो रानियां थी, और चक्रवर्ती शांति सागर की तो 96,000 थी। अब करो क्या कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग रुक थोड़ी गया, मोक्ष मार्ग हमारी आसक्ति से रुकता है, किसी के होने नहीं होने से नहीं रुकता है। और जब तक हमारी आसक्ति 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे, 84 साल की कोई की आयु हो तो 83 साल घर रहे, 1 साल के लिए निकले वहां और उसमें ही अपना कल्याण कर लिया, मोक्ष पा लिया, तो वो कोई बांधे थोड़ी थी, आपकी आसक्ति बांधी हुई थी, जिस दिन आपने वो छोड़ दी तो छोड़ दी। पर एक बन गया है आम आदमी का सोच बन गया। मैं तो कई बार व्यक्तियों से बात करता हूं तो ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति, मैंने फिर ऐसा लगने लगता है कि जो जिसको ज्यादा की अवधारणा है वो भी लोगों को क्लियर नहीं है। मैंने पूरी उसमें आई थी नवनीत में आचार्य सीता कोट करते हैं इस कविता को, अभी तुमने सिर्फ आग के रंग के कपड़े पहने हैं, तुम्हारा काम अभी योग की आग में जला कहाँ है, तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है, स्त्री के पीछे दौड़ना और स्त्री से दूर भागना, यात्रा दोनों में, जब तक ये यात्रा बंद नहीं हुई है तब तक तुम्हारी मोक्ष की यात्रा शुरू नहीं हुई। और आज दो ही तरह के लोग हैं, या तो पीछे भागने वाले या फिर उनसे दूर दूर, जैसे भगुआ बाबा हो या कि छू लेगा तो भ्रष्ट ही हो जाएंगे, या तो ऐसे लोग हैं, और या फिर ऐसे हैं कि बिल्कुल एक मिनट को भी जो है उनके मन से वो चीज जाती है। तो इसलिए ये कड़क की बात ये कह रहा हूं।
पर ये विषय भी बहुत कह रहा है,
इतना आसान नहीं है, इसमें तो सिर्फ आंख की बात है और हर आदमी जानता है, इसमें कोई बहुत किसी को समझाने और सिखाने की बात नहीं। आपकी आंख की कितनी पवित्रता है, अगला वाला आपकी आंख देख करके कह सकता है कि यह व्यक्ति कितना पवित्र है भीतर में, और वो पवित्रता जिसके पास है वो चाहे कहीं भी रहे, कोई उसको अलग से कुछ अतिरिक्त पालन करने की कोई रिस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता नहीं। हाँ ये जरूर है कि हमें एक सीमा, हमें एक अनुशासन, वो रखना एक अलग बिल्कुल चीज है, लेकिन एकदम अति कहीं कहीं पर बिल्कुल अति है, दोनों तरफ अति है, तो वो दुखदायी हो जाता है। एक हर एक मैंने बहुत विविंग लिबरेशन पर बात करने वाले लोगों को भी देखा, तो विविंग लिबरेशन पर बात करने वाले लोग बाकी सबके लोगों के लिए लिबरेशन है, अपने घर के लोगों के लिए लिबरेशन नहीं है। विविंग लिबरेशन की बात करने वाले लोगों को वो सोच उतना ही सा है उनका, क्या करेंगे हम अल्ले देकर के बात घूम फिर करके वहीं आती उससे बहुत बचना, मैंने निकल अपने मन को इतना आप अलग रखिए ना उससे, तीन कैडर बना दिए। अभी अपन पढ़ेंगे 10 लक्षण में कि मैंने शायद बताया थे कि माता सुता क्या सुता पहचानो, बस हो गया काम, अब इसके अलावा क्यों पहचानो, और चौथा कोई संबंध, लेकिन चौथा ही संबंध दिखता है, ये तीन तो दिखते नहीं व्यक्ति को। बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, अगर दो लोग बैठे बात कर रहे होंगे तो फिर एक ही संबंध दिखेगा उसको, बाकी नहीं दिखेगा। ये बड़ा आश्चर्य होता कि इतना गंदा मन। मैं आपको उधर झांसी की घटना बताऊं, एक तो मैंने विदिशा की बताई थी, झांसी की घटना थी, बड़ी सारी बिटिया वो अभी आजकल ग्वालियर में है, अब लेकिन उसने कभी महाराज जी को देखा नहीं, कभी महाराज जी से मिले नहीं, उनके पापा उसको लेकर के आए, वो लोग वैष्णव जैन कहलाते हैं, तो लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि बेटे महाराज के पैर छू, तो पैर छू मतलब कि पैर छू सीधा सीधा, तो मैं अपने काम में लगा हुआ था, बात बात कर रहा था, उतने में उसने जो है दोनों पैर छू करके लगा दिए माथे से, बाकी सब लोग चिल्ला पड़े एकदम, अरे महाराज जी को छू लिया और प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा आप लोग पहले प्रायश्चित कर लो, क्योंकि आपका मन गंदा हुआ, ना उसका हुआ ना हमारा हुआ, हमें ध्यान ही नहीं रहा, गंदा आपका हुआ, आप करो प्रायश्चित, हम काहे को प्रायश्चित करें। अब इस तरह की या तो इतनी अति है और या फिर जो है एक इंच का भी अंतर नहीं है, दोनों मन ये मन की चीज है, इसको आप बाहर से मत तोलिए। इसलिए ब्रह्मचर्य को हम इतना, हमारे सारे तीर्थंकर, पांच तीर्थंकर को छोड़कर के सब ने विवाह किया है, ये तो आज पूरा आचार्य श्री का संघ है जो ब्रह्मचर्य का उदाहरण दे रहा। नहीं तो पहले महाराज जी शादी वादी करने के बाद 50-55 साल के बाद महाराज बनते थे, और वो एक था उस समय कि भाई पूरा परिपक्व होकर के फिर बनेंगे। तो मैंने, मेरा कहने का ये कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य से ही शुरुआत होगी, ब्रह्मचर्य तो धीरे धीरे आकर के उसमें दिखा कि आकाश की तरह हम निर्मल हो जाएं, सबको समाने की हमारे भीतर ताकत है, फिर भी हम अनाविल हैं, फिर भी हम जरा भी मन को खराब नहीं होने देते, वो हमारे ब्रह्मचर्य की साधना है। पांचों इंद्री, एक इंद्री के विषय की बात आती है, जबकि पांचों इंद्री के विषयों की बात है उसमें ब्रह्मचर्य में, पांचों इंद्रियों के विषयों की, अकेले इतने ही है स्पर्श अकेले का नहीं, रसना का भी, आंख का भी, कान का भी, 12 नहीं, मैं 118,000 प्रकार के सील के भी अगर आपको पढ़ना है, 18,000 क्या करेंगे आप, वो पूरे के पूरे घटित देखना हो तो अनंत भगवान में देखेंगे। वैसे 9 कोटि की शुद्धि मन वचन काय कृत कार्य कर्म होगा, बस इतना 9 कोटि विशुद्धि पूर्वक ब्रह्मचर्य को धारण करे तो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये 11 प्रतिमाएं, और अपना क्लोज हो गया आज श्रावक धर्म के बारे में, लगभग जितना अपने को आउटलाइन पढ़ना थी, फिर इनमें और डीप में अपन पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर वाइज। अब श्रमण के लिए, श्रमण श्रमणाचार इसको बोलेंगे अपन, श्रावकाचार, ये जो अपन ने पढ़ा, जैनाचार में 2 कैडर कर दिए, एक श्रमणाचार एक श्रावकाचार। तो अपन ने श्रावकाचार पहले पढ़ लिया, एक्चुअली पढ़ना था पहले श्रमणाचार, मैं बाद में मुझे ध्यान आया कि उपदेश के लिए लिखा है कि पहले मुनि धर्म बड़ी चीज दिखाना, फिर बाद में उसकी गुंजाइश ना हो तो छोटी वाली दिखा देना, दुकानदार की तरह महंगी चीज दिखाते हैं, नहीं ले सको तो फिर छोटी, पर अपन ने अपने हिसाब से उसको कर लिया, श्रावकाचार कर लिया। श्रमणाचार में श्रमण किसे कहेंगे, तो जो श्रम करता है अर्थात जो तपस्वी है वो, और तपस्या किस बात की, अपने कर्मों को काटने के लिए, या कि अपने इच्छाओं को जीतना तप है, जो इच्छाओं को जीतना शुरू कर देता है वो तपस्वी है, वो श्रमण है, या कि श्रम का अर्थ सम भी है, समता, जो समता भाव वाला है वो श्रमण है। अब श्रमण 3 प्रकार के होते हैं, आचार्य भी, उपाध्याय भी और साधु, तीनों श्रमण है, क्योंकि तीनों समता वाले भी हैं और तीनों तपस्वी भी हैं। हम शुरुआत करेंगे साधु से, क्योंकि शुरुआत होती साधु से, साधु ही उपाध्याय बनता है, साधु ही आचार्य बनता है। साधु को कम से कम कितने गुण होना चाहिए, कितनी बातों का वो पालन करे तब वो तपस्वी कहलाए। तो साधु के 28 मूल गुण कहे गए, उनको अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं, मूल गुण कहते हैं। जैसे श्रावक के 8 मूल गुण हैं, वैसे ही साधु के 28 मूल गुण हैं। वो 28 समझ लें थोड़े थोड़े उसमें कि क्या क्या उनको करना पड़ता। तो सबसे पहले कहते हैं कि 5 महाव्रतों का पालन, जैसे 5 अनुव्रतों का श्रावक पालन करता, वे 5 महाव्रत वे के वे ही हैं। अहिंसा अनुव्रत था, अब अहिंसा महाव्रत आ गया कि मन में दूसरे को मारने का विचार तो नहीं करना, पर आरंभ इत्यादि अपने सांसारिक कार्यों को भी त्याग कर देना, और उद्योग भी नहीं करना है, और कोई अगर मार भी दे तो प्रतिकार नहीं करना है। अब चारों प्रकार की हिंसा का त्याग करना, अभी एक प्रकार की हिंसा छोड़ी थी, अब मन वचन काय कृत कार्य तनमोदना से सब प्रकार की हिंसा का त्याग कर दिया, ये अहिंसा महाव्रत है। राग द्वेष नहीं करना अहिंसा है, ये अपनी अहिंसा की बड़ी परिभाषा है, राग द्वेष नहीं करना ही अहिंसा है। उस राग द्वेष नहीं करने के लिए जो जो हम करते हैं वो सब भी अहिंसा कहलाएगा, क्योंकि हम एकदम तो राग द्वेष नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या करें, हम राग द्वेष को कम करने के लिए जो जो भी क्रिया करते हैं वो सब अहिंसा में महाव्रत में चली जाएगी। त्रस्त जीवों की भी, स्थावर जीवों की भी, किसी को भी तकलीफ हमारे आचरण से ना पहुंचे इस बात का प्रयत्न करेंगे। वह हमेशा प्रयत्नशील है, इसीलिए उसको यति बोलते हैं, यत्नाचार कर रहा है, बहुत सावधान है, बहुत सजग है। श्रवण को अप्रमत्त भी कहा है, अप्रमत्त मतलब जागरूक, अवेयरनेस, और वो भी चॉइस लेस अवेयरनेस। बहुत कठिन है चॉइस लेस अवेयरनेस तो कठिन है, पर अवेयरनेस उसकी रहती है कि वो हर समय सजग है कि उसके द्वारा जरा भी मन वचन काय से कोई हिंसा ना हो जाए। ये महाव्रत। इसी तरह सत्य के बारे में, वो सत्य ही बोले अन्यथा चुप रहे, ये महाव्रत हो गया। सत्य बोल सके, बोला जा सके सच तो बोलना, अन्यथा चुप रहना। और कहते हैं कि सच किसे कहेंगे, तो कहते आगम के अनुरूप बोलना ही सच है, इसके अलावा तुम्हारे लिए सब झूठ है। आगम के अनुसार ही बोलना, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही बोलना, इसके अलावा नहीं बोलना। अब वो वाली परिभाषा छोटी वाली नहीं चलेगी कि दूसरे को पीड़ा देने वाला सत्य नहीं बोलना, नहीं, अब तो आपको बोलना ही ऐसा है कि जिससे दूसरे को पीड़ा ही रहा, तो ठीक है, आगम में जो नहीं लिखा है वो तो बोलना ही नहीं आपके लिए। सूत्र वचन बोलना, जो भी बोलो हितकर बोलना, हित मित प्रिय, ये उस मैंने ये भाषा समिति हो जाएगी, अपन समिति पढ़ेंगे, भाषा समिति हो जाएगी। और ये सत्य धर्म का पालन करना जीवन पर्यंत, सत्य महाव्रत सत्य धर्म। तो कहते हैं सत्य महाव्रत का पालन क्या, व्रत ले लिया हमने कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य बोलने का संकल्प करना सत्य महाव्रत है, और फिर सत्य बोलना। अब बोलने में जो है दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं सामान्य लोग, अब जैन भी है उसमें अजैन भी है, पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है हमारी बात को ठीक ठीक समझने वाला हो या नहीं भी हो। तो कहते हैं कोई भी हो उसके सामने हित मित प्रिय बोलना, ये भाषा समिति। लेकिन जो सत्सु अर्थात जो सज्जन पुरुष हैं, आपकी बात को ठीक ठीक अर्थ लेंगे, उनके सामने सत्य धर्म का पालन करना। भाषा समिति में लिमिटेशन है, आप इतना ही बोल सकते हैं, सत्य धर्म में लिमिटेशन नहीं है। आप जानते हैं कि ये हमारी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, इसलिए जितना बोलना हो उतना बोल सकते हैं, पर सूत्र के अनुसार ही बोलना, आगम के अनुरूप ही बोलना, ये कहलाता है व्रत, धर्म और समिति। तीनों अपन तीनों पढ़ेंगे अभी आगे आकर के, पर यहीं क्लियर कर लिया अपन ने, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत। अचोरी महाव्रत में तो बिना दिए और एक तिन का भी नहीं उठाएंगे अपने हाथ से, बिना दिए हुए, जल मृत्ति, जल और मिट्टी, इन दो को छोड़ करके बस बिना दिए और कोई चीज भी अपने हाथ से ग्रहण नहीं करेंगे। मिट्टी ले सकते हाथ धोने के लिए, झरने का पानी कमंडल में कभी नहीं भरा गया हो, जंगल में चले गए हैं तो वो प्रासक होता झरने का, तो उसको अपने कमंडल में ले सकते हैं, बस इतना ही। बाकी अब और कोई भी चीज किसी की रखी हुई है तो उसको टच नहीं करेंगे बिना दिए हुए, ये अचोरी महाव्रत होंगे। इतना सूक्ष्म लिखा हुआ उसमें कि दूसरे की मैंने आवश्यकता से अधिक जगह ऑक्युपाई नहीं करेंगे, वरना थोड़ी लगेगी, कई बार लगने लगता है। उसमें लिखा हुआ है कि वो जो यहां से यहां तक आपने पाटा बिछा के रखा है, क्योंकि आप इस पर सोते हैं इसलिए फिर भी चलेगा, वरना आपने जितने बैठे थे उतना ही है, बाकी छोड़ दो खाली दूसरे के लिए, वरना ये ऑक्युपाई करी है चोरी लगेगी आपका। एक ग्रास भी अपने लिए अगर भोजन अधिक ले लिया है आपको चोरी का दोष लगता है, पेट में एक ग्रास ज्यादा ले लिया है, चाहिए नहीं था, एक अंजलि पानी अधिक ले लिया है किसी के कहने से, कह रहे महाराज थोड़ा और एक एक ग्रास हो गया, अब आवश्यक नहीं शरीर के लिए आपने डाल लिया, तो परिग्रह भी हो गया, परिग्रह का भी दोष लगा, आशक्तिपूर्वक लिया और चोरी भी हो गई, हाँ दोनों हो गई, वैद्य शुद्धि नहीं रही, भिक्षा शुद्धि नहीं रही। कहते भिक्षा शुद्धि नहीं है तो चोरी, अभी पढ़ेंगे अपन इसमें जब डिटेल, भिक्षा शुद्धि जिसकी नहीं है तो वो तो महाव्रत उसका खत्म हो गया, अचोरी महाव्रत। इतना सूक्ष्म है, हाँ महाव्रत है, अब अपन इमेज करें कि महाव्रत किस तरह का
होगा। नहीं तो गुंजाइश ही नहीं थी चोरी करने
की। हाँ ठीक हो गया। कितना टाइट करके रखा।
गुंजाइश नहीं, उसका भी उल्लेख कर दिया।
मतलब फिर आहार देते समय आग्रह भी नहीं करना चाहिए, आहार देते समय आग्रह नहीं करना चाहिए।
आग्रह करने से श्रावक का धर्म होगा, पर आग्रह को मानना नहीं चाहिए। श्रावक अपना धर्म करे, वो आग्रह तो करेगा ही। अरे नहीं महाराज, क्या उसमें। एक व्यक्ति तो बोले कि एक बार उनको लोगों ने मना किया कि महाराज जी वो नहीं ले रहे हैं भैया, बादाम नहीं ले रहे हैं, और आप बादाम की बर्फी देना चाह रहे हैं। कहले दिखा तो देंगे, शायद मन में आ जाए, लालच आ जाए शायद।
लालच की बात नहीं रहती, लालच की बात वही रहते कि लालच आ जाए। आप
फिर भी मतलब कहने का है कि
लेने के
क्या क्या मैंने दिखाने की क्या आवश्यकता है, शायद ले ले। उसके मन में ये लेता कि ले ले हमारी चीज, किसी भी तरह से ले ले, हमारा सब ले ले, उसके मन में यही रहता। तो श्रावक अपना कर्तव्य करेगा, पर साधु आसक्ति पूर्वक नहीं लेगा। शरीर के योग है तो सब ले ले, उसमें संकोच नहीं करे। जो शरीर के योग, जो साधना में ले तब बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजिर संजो, ये अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए नहीं ग्रहण किया, अपने दिन भर की यात्रा जीवन की उसके लिए ग्रहण, तपस्या के लिए। तो ये इसलिए उन अचौरी नहीं, उनका पालन ठीक ठीक हो पाता है। ब्रह्मचरी का तो पालन है ही, और फिर उसके बाद परिग्रह का परिमाणिक अपरिग्रह महाव्रत, कोई परिग्रह नहीं। परिग्रह मतलब कोई मूर्छा नहीं। पुस्तक भी रखी है तो उसमें मूर्छा नहीं, पीछे भी रखी है, कमंडल भी रखे, ये उपकरण है। ये उपकरण अगर हम आसक्ति पूर्वक रखेंगे तो यही परिग्रह बन जाएंगे। और उपकरण क्या है, जो हमारे ऊपर उपकार करें वो उपकरण है, और अगर उनके प्रति मूर्छा हो गई तो वही परिग्रह। इसलिए परिग्रह के नाम पर ये मेरे श्रावक हैं, ये मेरे अनुसार चलें, इस तरह की भावना आ गई, सचित परिग्रह हो गया, मैं इनसे अपना काम करवाऊंगा, बहुत बढ़िया है, अच्छा व्यक्ति मिला, इनसे अपना काम करवा लूंगा। बिना उसके कहे उससे काम नहीं बताएंगे, अगर काम बताएंगे नौकर की तरह तो सचित परिग्रह हो गया।
हम लोगों को कभी पूछ लेना चाहिए महाराज से, महाराज कोई काम।
लेकिन यहाँ के लोगों की तासीर ये है कि महाराज बुला के बते हैं काम, हमारी रिदम ही नहीं बैठ रही महाराज जी से। अब हमें अभी समझ में आया कि लोग क्यों जो है वो कह रहे कि हम महाराज से निकट ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि महाराज ने आज तक हमसे कछु काम की तक नहीं कही। कछु काम की कहते तो हम समझते कि हमारे महाराज हैं, हमसे काम की कहते, मगर जी कछु कहते नहीं है बुला करके कभी। अभी अभी चार पांच दिन पहले जो है समता सागर जी के पास से मैसेज आया मेरे लिए, इनको थोड़ा सा तासीर इनकी ऐसी काम हम बताते रहा करे, नहीं तो जी आपको अपना नहीं मानते। हमारा शिकायत आई है, हमारा शिकायत करके गए हैं कि महाराज जी तो हमें कछु बिल्कुल ही काम ही नहीं बता होता है, उन्हें कछु समझ ही नहीं आ रही, तो हम कैसे खुश करें का करें उनके, आप कछु बताओ। लगने लगता व्यक्ति को, मैंने एक सहज प्रवृत्ति है, उसको क्रिटिसाइज की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, एक सहज रूप से लगने लगता कि बताएं, पर हम अगर बताने लगे तो परिग्रह हो जाएगा। मुझे ये कहना वो पूछ है और अपनी स्वेच्छा से करे, उस पर बोझ ना हो। क्या मैं आपका ये कर दूं, देख लो आप। और उसको बुला करके करवाया, पता नहीं कैसा करेगा, हिंसा होएगी। अपनी चटाई तक उठाने के लिए नहीं कहना कि उठा करके ले आओ, आदेशात्मक भाषा नहीं बोलना कि मेरे लिए ऐसा कर दो, फिर तो वो आपका नौकर हो गया, नौकर हो गया तो बड़ी क्या। वो अपनी स्वेच्छा से करे, तीन दफे पूछे तो कह देंगे ठीक है आप अगर ऐसा चाहें तो कर लीजिए, आपको कोई मुश्किल तो नहीं, कोई नहीं, हम तो करके ले आएंगे, ठीक कर लीजिए। ये जो है बहुत सावधानी, मतलब जरा भी इंडल्जिंग नहीं होनी चाहिए, जरा भी उसमें ऊर्जा अपरिग्रह है बिल्कुल। तो ये पांच महाव्रत हो गए, फिर पांच समिति का पालन करते हैं अपन, पहले गिन ले पूरे 28 हो जाएंगे तो वो जरा अच्छा रहेगा, मैं बताना शुरू करूं। पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्री विजय, पांचों इंद्रिया है, पांचों इंद्रियों की विजय प्राप्त कर ली। छह आवश्यक, 21 हो गए, फिर सात शेष गुण कहलाते हैं। शेष गुणों में क्या आ जाएगा, केश लुंचन करना, निर्वस्त्र रहना, अचेलक, अस्नान स्नान नहीं करना, अदंत धावन भंजन नहीं करना, भूमि पर शयन करना, भूसहन पांच, और फिर उसके बाद खड़े होकर के भोजन करना, एक बार भोजन करना, ठीक भोजन ए भक्तम चल, एक बार भोजन और खड़े होकर के भोजन, ये सात जो है मूल गुण ये है। कितने हो गए पूरे 28 मूल। अब पांच समिति कौन सी है, समिति का मतलब है क्रिया तो करना है लेकिन सावधानी पूर्वक। कितनी क्रियाएं करता है व्यक्ति, सबसे पहले आने जाने की क्रिया करता है, तो कहते आने जाने की क्रिया भी संभल के करना, इसी को बोलते हैं इरिया समिति। आने जाने में सावधान रहे, चार हाथ आगे जमीन देख करके चलना, सूर्य के प्रकाश में चलना, प्रासुक जमीन पर चलना, अर्थात पहले लोग वहां से गुजर चुके हों या उस जमीन पर सूर्य का प्रकाश पड़ चुका हो, ऐसी जमीन पर ही चलना, चार हाथ आगे देख करके, यहाँ वहां आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं भी देख कर नहीं, आगे चार हाथ, जीव रक्षा के लिए ये कहलाएगी इरिया समिति। एक तो चलना ही मत, क्योंकि चलने से हिंसा होगी, कहते अगर चलना भी हो तो पर्पज, कोई पर्पज हो, अपने उस विहार कर रहे हैं तब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, आहार के लिए जाना, और या कि अपने दैनिक क्रियाओं के लिए जाना, बस इतना है। इसके अलावा और यहां वहां जाने का बिना प्रयोजन के तो जाने ही नहीं, और प्रयोजन से भी जाओ तो समिति पूर्वक जाना, ये कहलाएगी इरिया समिति। फिर अपन बोलते हैं, एक तो कह रहे हैं कि पहले तो बोलना ही मत, और अगर बोलने की आवश्यकता पड़े तो कैसे बोलना, हित मित प्रिय बोलना, इसका नाम भाषा समिति है। पहले ध्यान रख लेना कि इसको बोलने से हित होगा कि नहीं, अपने मन में दूसरे के हित करने का भाव है कि नहीं, बोल तो रहे हित कर पर भीतर भाव नहीं है हित का, तो दोनों गड़बड़ है। भीतर हित का भाव होना चाहिए, भले ही बाहर उसका अहित भी हो जाए तो भी चिंता नहीं करना उसकी, क्योंकि वो जिसमें हित मानता है वो तो अलग ही चीजों में हित मानता, पाप में हित मानता कोई तो हम क्या करेंगे, क्या उसको उपदेश नहीं देंगे पाप छोड़ने का, देंगे उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, पर उसके हित में है तो हित कर बोलना। मित टेलीग्राफिक, दो शब्द से काम चलता हो तो दो ही शब्द, अधिक नहीं बोलना, परिमित बोलना, और प्रिय बोलना। प्रिय बोलना मतलब मन की मधुरता के साथ बोलना, हृदय की मधुरता के साथ बोलना, कटुतापूर्वक नहीं बोलना। ये तीन चीजें अगर हैं तो भाषा समिति होगी। फिर खाने पीने में, खाने पीना तो पड़ेगा, तो खाने पीने की सावधानी रखना पड़ेगी, तो कहते शोध करके खाना, सुकुल शावक तने घर आसन को, वो आगे येष्णा समिति, इसको बोलते येष्णा समिति। चलने फिरने का काम करना पड़ेगा उसके लिए समिति बता दी, फिर बोलने का काम है तो उसके लिए समिति बता दी, अब खाने पीने के काम में भी सावधानी रखना तो येष्णा समिति बता दी, फिर चीजें उठाओगे धरोगे उसके लिए भी समिति के पालन करना, इतना ही करना पड़ता। तो जो भी किताब इत्यादि सब उठाओ, देखभाल के उठाना, जीवों की हिंसा ना हो, आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण उठाना रखना, इनके लिए सावधानी, निर्जंतुक स्थान पर ही इनको उठाना रखना, पीछे से परिमार्जित कर लेना, शरीर को भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते समय ये भी उपकरण है, इसको भी उठाना धरना, तो देखभाल करके उठाना धरना, बैठने से पहले पीछे लगा लेना, खड़े होने पर उस स्थान को छोड़ रहे हो इसलिए उस स्थान के बैक्टीरिया दूसरे स्थान पे जाके मर सकते हैं, पीछे पूरे शरीर को लगा करके वहां के बैक्टीरिया वहीं, और फिर आगे बढ़ जाए। धूप में से सहसा छाया में मत जाना, छाया से सहसा धूप में मत जाना, थोड़ा सा रुक करके, एटमॉस्फियर चेंज होगा तो उससे हिंसा होगी, क्योंकि शरीर भी माध्यम है हिंसा, हिंसा का उपकरण है, है?
उपकरण मान लिया जाता
है, उपकरण है, उस हिसाब से उसकी पूरी देखभाल करना पड़ेगी, उपकरण है शरीर भी, तो उसको उसको भी उठाना बैठाना रखना है, ये बाकी तो सब ठीक है, ये आधार निक्षेपण समिति। फिर प्रतिष्ठापन एक और रह गई, फिर एक और बाकी बची, वो क्या है, प्रतिष्ठापन समिति, मल मूत्र का विसर्जन करते समय सावधानी रखना, निर्जंतुक स्थान पर ही मलमूत्र का स्थापन करना, थूकना भी है तो ऐसे नहीं कि जहां कहीं पर, पीछे से प्रमार्जित करके फिर वहां पर अपना, देखो विकृतियों का भी त्याग करना है तो उन विकृतियों के ताक से दूसरे को तकलीफ ना पहुंच जावे, इसका भी ध्यान रखें। ये प्रतिष्ठापन समिति हो गई, ये पांच समितियां हो गई, क्रिया समिति, भाषा समिति, निष्णा समिति, आधार निक्षेप समिति, प्रतिष्ठापन समिति। नाम याद भले ही ना रहे पर एक जनरल फिगर रहे कि देखो महाराज जी जो है भोजन करते समय भी सावधानी रखते हैं, चलते फिरते समय भी, बोलते समय भी सावधानी रखते हैं, उठाते धरते समय सावधानी रखते हैं और अपने मलमूत्र इत्यादि का विस्थापन भी करते हैं, तो कितनी सावधानी से करते हैं।
किसी
सजगता अहिंसा का सब में एक ही व्रत तो एक ही है, 28 के पीछे आप देखेंगे एक ही है व्रत अहिंसा, उसी के लिए सारी चीजें हैं, क्योंकि अहिंसा हमारा परम धर्म है, हमें पहुंचना वहीं तक है। फिर पांच इंद्री विजय, उनको तो अलग अलग डिफाइन करने की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना अलग चीज है और उनमें आसक्त होना अलग चीज है। मुनि महाराज आसक्ति छोड़ देते हैं पर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण तो करते हैं, कोई आंख फोड़ लेने से तो काम चलेगा नहीं, आंख से देखेंगे तो ही, पर ठीक ठीक देखना, कान से सुनेंगे पर आसक्त होकर नहीं सुनना, कल फिर ऐसा ही सुनने मिले ऐसा नहीं, जिस चीज से राग है वो सुनने मिले ऐसा भी, खाने पीने की रसना इंद्री है ये चीज बहुत अच्छी है यही मुझे मिले और कल भी मिले ऐसा कुछ नहीं, मिल गया ठीक है स्वाद तो लेंगे, खट्टे की जगह खट्टा लगेगा, मीठे की जगह मीठा लगेगा, लेकिन मीठा है इसलिए अच्छा है, खट्टा है इसलिए खराब है, ऐसा विकल्प नहीं करना। शरीर के योग जो है, मन के योग तो कोई भी चीज मन के योग नहीं होती है, आपके शरीर के योग हो उसको ग्रहण कर लेना। रसना इंद्री पर विजय हो गई, कर्ण इंद्री पर, घ्राण इंद्री पर, स्पर्श इंद्री पर, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ये उनके पांच मूल गुण की तरह हो जाते हैं। फिर देखिएगा छह आवश्यक मुनि महाराज के थोड़े से अलग हैं, श्रावक के जैसे अपन ने देव पूजा गुरु पास्ति शास्त्र अध्याय संयम तप और त्याग पढ़े, ऐसे छह आवश्यक हैं। सबसे पहले है सामायिक, फिर उसके बाद वंदना, फिर स्तवन, हाँ इनमें अंतर देखेंगे अपन, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये छह आवश्यक होते हैं, दिन भर में ये करना पड़ेगा। सबसे पहले सामायिक, समता समारे हैं, सामायिक के समय पर तो सामायिक करना ही है, 24 घंटे भी समता भाव रखना है, ये सामायिक। फिर निश्चित समय पर तो करना ही है, तीनों संध्याओं में सामायिक करना इसलिए आवश्यक है, ये तो तत्ता तो करना ही पड़ेगा, और बाकी पूरे समय समता रखनी है। फिर वंदना, तीनों संध्या कालों में, संध्या काल से आप समझते ना ट्रांजिशन पीरियड, सुबह दोपहर और शाम है, तो इन तीनों संध्या कालों में किसी एक तीर्थंकर की स्तुति और दर्शन दोनों करना, ये कहलाएगी वंदना। स्तुति पूर्वक किसी एक तीर्थंकर की स्तुति पूर्वक उन्हें प्रणाम करने का नाम वंदना है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति पूर्वक उन्हें प्रणाम करने का नाम स्तवन, ये दो अलग अलग आवश्यक है,
वंदना और स्तुति।
वंदना में एक तीर्थंकर की और स्तवन में 24 तीर्थंकर की, ये रोज करना पड़ेंगे, ये आवश्यक है, एक तीर्थंकर की सेपरेट और विशेष रूप से महावीर स्वामी की, क्योंकि उनका काल चल रहा है, जिस समय जिसका तीर्थंकर का काल चलता है उन तीर्थंकर की करो, हाँ 24 तीर्थंकर की स्तुति हम लोगों की है तो वो पढ़ते हैं, और एक तीर्थंकर की वीर भगवान की महावीर स्वामी की वो पढ़ते हैं, आधे घंटे का पूरा ये आवश्यक रहता है, सुबह शाम प्रतिक्रमण के साथ साथ ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आ गया, प्रतिक्रमण, जो अपन प्रतिक्रमण करते हैं सुबह शाम और दोपहर में, प्रतिक्रमण का मतलब होता है किए गए दोषों के निराकरण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, जो दोष लग गए हैं उनका निराकरण करना है, इसलिए प्रक्रिया कर ली अपन ने, उच्चारण कर लिया कि भाई मैंने जो जो भी अपराध किया उसको कन्फेस कर लिया, मैं उस अपराध से अपने को मुक्त करता हूं, ऐसा, तो ये प्रतिक्रमण। फिर आगे नहीं करूंगा, सौगंध लो रोज सुबह दोपहर शाम, प्रत्याख्यान आगे नहीं करना है, जबकि कल फिर परास तो ले लो, नियम तो ले, क्या पता प्राण निकल गए तो कम से कम प्रत्याख्यान तो है कल तक का, तो कल तक के लिए मैं सब चीजों का पुनः भोजन लेके आते हैं तो फौरन जाते मंदिर में, अब चारों प्रकार के आहार का कल तक के लिए त्याग करता हूं, प्रत्याख्यान, ऐसे जो है प्रत्याख्यान। फिर कायोत्सर्ग, दिन भर में लक्षंका गए एक कायस्वर करना पड़ेगा, शौच इत्यादि गए एक कायस्वर करना पड़ेगा, स्वाध्याय किया तो एक कायस्वर पहले एक कायस्वर नहीं दो कायस्वर पहले एक कायस्वर बाद में तीन कायस्वर करना पड़ेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे तो चार कायस्वर करना पड़ेंगे, दिन भर में ऐसे 28 कायस्वर करना पड़ेंगे। ये आवश्यक हो गया कायस्वर नाम का, 6 आवश्यक हो गए। कायस्वर वैसे कायस्वर का मतलब है एक निश्चित समय तक के लिए शरीर से ममत्व छोड़ना, काय का उत्सर्ग। अब शरीर को तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो शरीर से ममत्व छोड़ दिया तो क्या करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए शरीर मेरा नहीं है, बस ऐसा विचार मन में ले लिया, 9 बार नमोकार भी पढ़ लिया और शरीर से आशक्ति छोड़ दी उतनी देर के लिए, काय उत्सर्ग हो गया। इस तरह 7 शेष गुण रह गए, तो सबसे पहले उत्कृष्ट 2 महीने में, मध्यम 4 महीने के पहले पहले, और 4 महीने में उत्कृष्ट, मध्यम और जघन, ऐसे 3 प्रकार का केस लॉन्च होता है। 2 महीने में कर सको 2 महीने में कर लो, 2.5-3 महीने में मैक्सिमम कितने, 4 महीने के पहले पहले केस लॉन्च कर लेना, अपने हाथ से केस लॉन्च कर। ये केस लॉन्च नाम का एक मूल गुण है। नहीं वैसे 2 चीज कठिन है, अगर ये छूट दे दी जाए तो बहुत जने बन जाए, 2 बार भोजन और केस लॉन्च में करने पड़े। उसमें लिखा हुआ है कि मैं तो जो है मुनि बन जाऊं, लेकिन 2 बार भोजन की छूट मिले और केस लॉन्च नहीं करना पड़े, बन जाऊ तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
भोजन में तो फिर भी हो जाएगा
इसमें शास्त्र में है, शास्त्र अन्न मतावलंबी कहते हैं, उनकी चर्चाएं आती है उसमें कि जैनों में जो है अगर ये 2 चीज नहीं हो तो हम तो इसको मान लेंगे, और कई लोग उसको दूसरी दृष्टि से कहते हैं कि ये तो जो है अपने को अपना आत्मघात करने वाली प्रक्रिया है, ये सबसे कठिन है केश लॉन्च करना और एक बार भोजन नहीं करना 24 घंटे के लिए। श्वेतांबर साधु भी इस बात को रियलाइज करते हैं, हमको बहुत मिल जाते थे वहां तो इंदौर में, तो वो एक ही बात कहते थे कि आप एक ही बार भोजन करते हैं, आप दिन भर जो है चर्चा भी कर लेते हैं पानी नहीं पीते, हम तो अभी आपसे 1 घंटे चर्चा करके जाएंगे वहां पर पानी पियेंगे, हमको उसके बिना तो चलेंगे नहीं, है पीते 3-4 बार पीते हैं। देखो सुबह से चाय लेते हैं, दोपहर का भोजन सुबह का चाय बिस्किट लेते हैं सुबह का, दोपहर का फिर 10-11 दोपहर का भोजन मैंने 10 बजे वाला भोजन, फिर दोपहर की चाय, दोपहर की चाय फिर लेते हैं, शाम का भोजन फिर लेते हैं, वो तो चार
हाँ।
तो कितनी संख्या है 10,000, श्वेतांबर साधु 10,000 है, दिगंबर साधु में आरिका माता जी और एलक छुल्लक मिलाकर के कुल 600 है, कुल 600 है अभी पिछले साल तक की संख्या।
अगर अपन लेवल का सोचे तो अपन लोगों में ज्यादा हो जाएंगे
अपने यहाँ, तो अपने यहाँ पर ये अपने यहाँ पर मालूम क्या लिखा, 1 बुंदेलखंडी और 100 दंडी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़ने बैठने कहते, 1 दंडी नहीं, 1 दंडी 100 नहीं, 1 बुंदेलखंडी 100 दंडी, दंड धारण करने वाले श्वेतांबर साधु 100 मिलकर जितना आचरण नहीं करते उतना एक बुंदेलखंड का गृहस्थ श्रावक कर लेता है, उनका कहने का आशय 100 दंडी 1।